दुयो सियो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी सुनो सुनो
जिसको सुनकर ज्ञानी भी जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी
सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत सूक्ष्म लेवल पे जा रहा था, जो हम पहले लंबी कोई बात सुनाते थे, चाहे सर्विस का समाचार हो चाहे कोई व्यक्तिगत बात हो, बाबा धीरे धीरे पहले पूरा सुना करता था। इतने तक जो हम किसी को ज्ञान सुना के आए वो पूरा सुनता था, क्या सुनाया, क्या उसने प्रश्न पूछे, क्या हमने जवाब दिए, फिर उसकी करेक्शन करता था। ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते गए तो बाबा अपना आंतरिक जो बाबा की अभ्यास था, हर समय शिव बाबा के साथ के अनुभव में रहना, वो हम लोगों को धीरे धीरे जैसे फील होता था, बाबा के नैन नक्श से नैनों से जैसे बाबा को याद करते शिव बाबा को तो फट से नैनों में वो मुस्कान आ जाती थी। और बाबा की ये प्रैक्टिस इतने तक चली गई, उसके फल स्वरूप बाबा के जो प्रकंपन है वाइब्रेशन है वो बहुत पावरफुल फील होते थे। और बाबा के पास आने से ही जैसे हम लोगों के अंदर भी वो शक्ति आ जाती थी, संघ का सूक्ष्म संघ का रंग, जैसे यहाँ बाबा बैठ करके दृष्टि देंगे तो सोचना नहीं पड़ता था, एक सेकंड में जैसे एकदम परिवर्तन, और शब्द भी थोड़ा सा सुनाएंगे तो ऐसा नशा चढ़ता था, ऐसा चेहरे में वो खुशी आ जाती थी, चेहरा इतना मोटा मोटा हो जाता था मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो फीलिंग होती थी हम किसके सामने बैठे, कौन हमें बाबा कौन सुना रहा है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही ऐसी हस्तियां और वो इतना समीप से हमें मिल रहे हैं, इतना हमें शक्तिशाली बना रहे हैं, इतना साथ में भरपूर कर रहे हैं ज्ञान और योग से, तो सोचना नहीं पड़ता था निश्चय है नहीं है वो नहीं, एक जैसे क्या कहते हैं उसको सन्मुख के उस अनुभव को कोई स्वीकारे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। पर जैसे मैंने बताया ना बाबा धीरे 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 फिर अपने आंतरिक स्थिति को इतने तक ले गए, जो बाबा के चेहरे पर जो पहले परिवर्तन कभी दिखता था वो चेंज हो गया था। जैसे हर समय बाबा बाबा के साथ है और वो बाबा के चेहरे पर जो लास्ट के फोटोज बाबा के बहुत पावरफुल बहुत मीठे हैं, जिसको कहें अंग्रेजी शब्द बहुत ब्लिसफुल स्टेज के वो फोटो है, तो एक अनुभव उस समय का बाबा का है, बाबा ने अपने झोपड़ी में उधर बैठ के मिलने का टाइम दिया था, तो मैं जो टाइम बाबा ने दिया था वैसे मुझे एक बड़ी फख्र है इस बात का कि बाबा ने शुरू से 1959 से ही ऐसा एक अपनापन दे दिया, जो बाबा कहते थे बच्चे कभी भी बाबा से मिलना हो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा बाबा के पास आ सकते। तो फिर भी बाबा पत्र लिखते थे या कोई भी बात, तो एक टाइम जैसे ले लेने से ये था कि बैठ के बात कर सकते थे। तो मैं गया बाबा के झोंपड़ी पर, लेकिन उस समय क्या देखा, बाबा बहुत एकदम पता नहीं यहां से कहीं दूर। तो मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं बाबा को डिस्टर्ब करूं, तो बाबा के पास जाके मैं बैठ गया साइड में। और बैठा तो जैसे कहते ना संग का रंग लगता है, पास बैठने से ही मैं भी जैसे उड़ गया यहां से, एकदम फरिश्ता स्वरूप और शक्तिशाली उस समय का, बहुत एक सुखद फीलिंग उस समय की। थोड़ा टाइम के बाद फिर बाबा जैसे नहीं ऊपर से नीचे आए, फिर मेरी तरफ ऐसे देखा, तो मैं बहुत अंदर में अपने आप को क्या कहें, बहुत भाग्यशाली की फीलिंग मुझे आई कि इतना समीप से मुझे बाबा दृष्टि दे रहा है। और मैं दृष्टि लेता रहा, जैसे उसी में खो गया। फिर कुछ टाइम के बाद बाबा पूछने लगे, हाँ बच्चू कुछ पूछना था पूछिए। मुझे वो सब भूल गया था कि मुझे क्या पूछना था, कुछ याद नहीं। और मुझे उसी में इंटरेस्ट के बाबा से मुझे दृष्टि मिलती रहे बस। मैंने कहा बाबा वो जो पूछना था वो तो मुझे भूल गया, जब याद आएगा मैं बाद में पूछ लूंगा। फिर बाबा और दृष्टि देते बहुत प्यार से, गले लगा के इतना प्यार दिया। तो इस तरह से बाबा ने रूहानी परवरिश प्रैक्टिकल में मधुबन में दी है, उसमें कभी यहाँ पर, कभी झोपड़ी में, कभी अपने रूम में। और वीनू बहन बाबा की सेवा में थी उस समय, बाबा को गरम गरम रोटी बना के खिलाती थी। तो बाबा हम बच्चों को वो प्यार ही देने के लिए अपने रूम में इनको बुलाते थे, सिगरी वहां मंगा लेते थे, साथ में वहीं उसी टाइम पर गरम गरम रोटी और उसमें मक्खन और बूरा, चीनी का बूरा बनाया हुआ, वो फिर बहुत प्यार से खिलाते थे, कभी मद भी डालते थे। मतलब साकार बाबा ने निमित बन के वो अनुभव कराए कि ईश्वरी पालना क्या होती है, और उस पालना के फलस्वरूप जो हम लोगों के अंदर पुराने संस्कार, पुरानी कमजोरियां, पुरानी बातें, वो बाबा ने प्यार की शक्ति से सब छोड़ा। बहुत बाबा प्यार से कहते थे अपना चार्ट लिखो, क्या क्या लिखो वो भी मुरली में आप लोगों को मालूम है। तो एक साइड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कि अपनी आध्यात्मिक जीवन को किस तरह से सुनिश्चित रूटीन से, दिनचर्या से एक्यूरेट बनाए, और उसके साथ साथ सूक्ष्म पुरुषार्थ जो है वो कैसे अभ्यास बीच बीच में, जैसे जिसकी अभी निशानी मैं कहूंगा ट्रैफिक कंट्रोल है, ये ट्रैफिक कंट्रोल बाबा के प्रैक्टिकल अभ्यास की निशानी है। और वो बाबा हम लोगों को सिखा, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातें जो नॉर्मली हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। जैसे न्यूज़पेपर की एक बात है, हम लोग बहुत टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने में लगा देते हैं। उन दिनों में बाबा ने बहुत प्यार से समझाया था, बच्चे 15-20 मिनट से ज्यादा न्यूज़पेपर नहीं देखना, न्यूज मोटी मोटी देखो पर वो उसमें से भी उस नजर से देखो कि इसमें इसको पढ़ने से क्या सेवा कर सकते हैं। एक होता है सिर्फ न्यूज जानने के लिए, अखबार भी क्या है इसमें, किससे कहानियां पढ़ने के लिए बाबा को वो नहीं कहते थे कि आप पढ़ो ये बैठ करके, जरूरत नहीं है उसकी, ताकि हमारा बुद्धि योग मुरली के ऊपर है। ट्रैवलिंग करके आते थे ना ट्रेन से, तो आते ही स्नान पानी करके बाबा के रूम में जाके बाबा से मिलते थे, टोली लेते थे, बाबा कुछ खैरावत पूछता था। तो फिर नॉर्मली क्या होता, भी नाश्ते का टाइम है या भोजन का टाइम है, तो बाबा उस समय कहते थे बच्चे आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अच्छे बाबा ने अमूल्य ज्ञान रत्न दिए, पहले मुरली लेकर के पढ़ो उसके बाद भोजन करना। यानी मुरली की वैल्यू बाबा को कितनी थी और मम्मा को कितनी थी, फिर दादी को कितनी थी, हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा है सारा। अभी समझ में आता है कि अनेक जन्मों के संस्कार जो हमारे अंदर भरे हुए हैं उसको मिटाने के लिए कितना योग बल चाहिए, कितना ज्ञान का बल चाहिए। और उसके लिए जब तक हमारे अंदर वो रियलाइजेशन नहीं आती है, हम महसूस नहीं करते उसको, तब तक पुरुषार्थ के ऊपर इतना ध्यान नहीं जाता है, उसकी महीनता में जाने के लिए इतना उत्सुकता नहीं रहती है। मोटे रूप से जैसे मुरली सुन ली, थोड़ा नोट से 2-4 लाइन पॉइंट्स कुछ नोट कर लिए, लेकिन ये ईश्वरी पढ़ाई इतनी श्रेष्ठ है, इतनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए हमें, जिस पढ़ाई से अनेक जन्मों का पुराना हिसाब खत्म हो जाता है, जिस पढ़ाई से ऐसे गुण धारण होते हैं जो मनुष्य को देवता बना देते हैं। कल की मुरली जैसे थी, वो दान पुण्य बहुत करते हैं तो एक जन्म की राजाई मिलती है, और बाप आकर के ज्ञान और योग से आप बच्चों को किस जन्म के लिए सत्युग की और त्रेता की डबल ताजधारी ऐसी बादशाही देते हैं। अब ये इतनी गहरी बात है, उसकी रियलाइजेशन अगर दिल में हो, आप सोचिए कितना उसके ऊपर ध्यान रहेगा, और धारणा के लिए भी बहुत उत्सुकता रहेगी कि हम अपनी जीवन में जो हमारा सत्युग का श्रृंगार है, सत्युग की जो महिमा है जीवन की, वो संस्कार भी हमारे धारण हो जाए। देवता के संस्कार वास्तव में अभी धारणा चाहिए, वो संस्कार लेके जाएंगे तो बाबा कहता है ये ज्ञान साथ में तो नहीं जाएगा, लेकिन वो स्थिति वो संस्कार आपके भविष्य में जाकर के नए सिर से फिर वो जीवन शुरू करें। और उसमें बाबा खासकर बार बार हम लोगों को, सुबह को भी ये क्लास में लाइट जलवाई थी, इसको ऑन करो, इस तरफ बहुत ध्यान खिंचवाता था। बाबा कहते थे बच्चे इस चित्र को बार बार देखो तो आपको नशा चढ़ेगा, बाबा हमें क्या से क्या बना रहा है, 16 सिंगार पूरे हैं उसमें, और ये चित्र की भी अपनी कहानी है। ये चित्र बनाने के लिए खास मम्मा को बाबा ने बॉम्बे भेजा था, और मम्मा 3 महीना उस समय बॉम्बे में रही थी, आर्टिस्ट बना के लाता था, फिर मम्मा उसको देखती थी, फिर उसी टाइम पर आर्टिस्ट के सामने हमारी शील इंदिरा दादी को उसी समय ट्रांस में भेजते थे कि बाबा के पास जाओ वतन में और देख के आओ कि ये चित्र इसमें और क्या ऐड करना। फिर वो ट्रांस में जाती और वहां बाबा उनको श्री लक्ष्मी नारायण का सामने वो साक्षात्कार कराते और फिर आकर के बताती इसमें ये अंगूठी नहीं है, इसमें ये कंगन कम है, इसमें ये मोती कम है, इसमें ये फूल कम है, इसमें मस्तक पे वो जो ओम शांति। सो अभी वो सब बातों को जब हम सामने देखते हैं तो यही मन में आता है कि मधुबन निवासी भाई बहने हमारे इतने एक साइड है कितने भाग्यशाली है और दूसरी साइड जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। सारे विश्व के सभी आत्माएं जिनको भी संदेश मिलता है वो कहाँ आते हैं? हैं? मधुबन आते हैं, बाबा से मिलने आते हैं, मधुबन आते हैं, महान तीर्थ पर आते हैं। तो एक तरफ देखता हूँ कि कल पहले वाले मधुबन निवासी ऐसा नशा रहता है कि हर क्लब हम ही मधुबन निवासी बनेंगे, खुशी होती है ना। जैसे बाबा को नशा था क्लब क्लब बाबा निमित्त बनेगा, क्लब क्लब से बाबा इसी तन में आएगा, हम बच्चों को भी ऐसा नशा चाहिए कि हर क्लब में हम बच्चों का ये इतना महान भाग्यशाली पार्ट है कि हम मधुबन निवासी बने। हर एक मधुबन निवासी के अंदर अपनी अपनी विशेषता है। मधुबन का इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, सच पूछो तो लोग तो आश्चर्यवत होते हैं। चाहे शांति वन है, चाहे यहाँ पांडव भवन है, चाहे ज्ञान सरोवर है, चाहे ग्लोबल हॉस्पिटल है, चाहे पीस पार्क है, चाहे म्यूजियम है, जो भी स्थान बाबा के हैं, सब जगह पर हर एक अपनी जिम्मेदारी इतना प्यार से निभा रहे हैं, इतनी जिगर से सेवा कर रहे हैं और इतना मिठास से सबके साथ व्यवहार करते हैं, उसके कारण आने वाली सभी आत्माएं इतने संतुष्ट होते हैं, इतने खुश होते हैं और उनकी दिल से दुआएं निकलती हैं। तो जैसे दादी जी को नशा था, बड़ी दादी को, कुमार का दादी को ये बड़ा नशा रहता था, बड़े नशे से बोलती थी बाबा आप जाओ सारे संसार में ढूंढ लो, हमारे जैसे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। सुना, इतना नशा दादी को रहता था और दादी को पांडवों पर, शक्तियों पर, जो पांडव भवन के, दादी को बहुत नशा रहता था। उसका एक ही कारण कि हर एक ने एक तो बाबा को ठीक पहचान लिया और बाबा के दिल से बन गए, बाबा जो हैं जैसे हैं आपके। फिर बाबा की जिम्मेदारी है हमें योग्य बनाने की और वो योग्यता बाबा भरता जा रहा है हर एक के अंदर और उसके साथ साथ में इतना महान कार्य है। हालांकि हर एक सेवा केंद्र की जिम्मेदारी जिन पर होती है उनकी जिम्मेदारी कोई कम नहीं है, हर एक स्थान की जिम्मेदारी, इसी तरह से मधुबन में चाहे ऑफिस है, चाहे किचन है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे डॉक्टर का काम है, जिस भी डिपार्टमेंट में है सफाई होती है। मैं तो ये देखता हूँ हमारे यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता जो बाबा ने बहुत विचार करके, मैं समझता हूँ हम सबको ड्रेस कौन सी दी, सफेद, क्यों? स्वच्छता के लिए, अंदर और बाहर स्वच्छ। तो वो सारी बातें जो है हम देख रहे हैं कि उसके फलस्वरूप सारी दुनिया में लोग बहुत जगह जाते हैं, उनको ऐसी स्वच्छता नहीं नजर आती, भाई बहनों का इतना प्यार कहीं मिलता नहीं किसको, निस्वार्थ प्यार। और जिस तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो सेवा कहीं दिखती नहीं। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए ये सारी हमारी जो यज्ञ की धारणाएं और यज्ञ की जो बातें हैं, ये एक एक बात बहुत इसका अहम, क्या कहते हैं, बहुत ही एक अहम पार्ट। तो इसके लिए हरे को क्या नशा होना चाहिए, सदा इस नशे में रहना चाहिए। वाह, क्या वारे वारे मैं, वारे मेरा पार्ट, वारे मेरा बाबा, वारे मेरा भाग्य। ये सब बातें अपने दिल में आनी चाहिए कि ऐसा पार्ट हमें बाबा ने दिया है। तो बहुत खुशी में सदा रहें, आनंद में रहें, और सबसे बड़ी बात अव्यक्त मुरली सुनने के लिए लोगों को दूर दूर से आना पड़ता है, और आपको नहीं नहीं फिर भी मधुबन में, हाँ उनको तो एक ही सुनने को मिलती है, चलो एक दो जितनी भी होंगी, लेकिन मधुबन निवासी होने के नाते से एक अधिकार हो गया हमारा कि जब बाबा आएंगे मधुबन निवासियों के लिए स्थान रखा हुआ है, वहां आकर के बैठ के मुरली सुनेंगे। तो ऐसे बहुत सारी अगर मंथन करो ना, मधुबन निवासी होने से इतना नशा चढ़ता है, इतनी खुशी होती है और दिल में गुदगुदी होती है, बाबा को दिल से स्वतः ही प्यार भी करते हैं और थैंक्स भी देते हैं कि बाबा आपको थैंक्स। आप सोचिए थोड़ा, मैं तो कभी कभी वो सोचता हूँ 600 करोड़ आत्मों में से कितने मधुसी बनते हैं। अभी इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जीतने वाले के भी इतने वोट पड़े 55,000-60,000 और हारने वाले के उससे थोड़े कम पड़े, ठीक है ना? आपको कितने वोट मिले? सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों के वोट कितने हो गए? सोचो तो सही थोड़ा। तो बहुत नशे की बातें हैं, और जब कोई ऐसे लोग आते हैं और हम सेवा करते हैं तो उनको दिल को छूता है, और भी जितना हम इस बात को रियलाइज करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, क्योंकि आगे और भी संख्या तो आने वालों की बढ़ रही है ना, तो संख्या भले बढ़े, कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन बाबा ने जिस तरह का वो सिस्टम बनाया आज से लेकर के, फिर दादी जी ने उसको आगे कंटिन्यू किया, फिर अभी दादी जानकी जी निमित्त बन के देखो कितना ध्यान दे रही है, अपनी उम्र का ध्यान नहीं, उनको दिल में है हमारे भाई बहने, मेरे भाई बहने, दादी हमेशा कहती मेरा भाई, फोन करेंगी मेरा भाई। जिस दिन आएंगी सीधा कहेंगी मैं मधुबन जाकर के क्लास कराऊंगी, सुबह को मुरली जरूर सुनाऊंगी। तो ये सब बातों को जब देखते हैं ऐसे लगता है कि हम लोगों को कितना बाबा ने सौभाग्य दिया है, पद्मा पदम भाग्य दिया, सौभाग्य तो बहुत थोड़ी बात होगी। तो एक तरफ अपने भाग्य के गीत हम लोग दिल में गाएं, और दूसरी साइड है कि जिस सेवा में बाबा ने हमें चुना है, सिलेक्ट किया, आपका पार्ट दूसरा कोई नहीं बजा सकता है। आप ये ना सोचना कभी मैं नहीं होऊंगा तो मधुबन में तो बहुत भाई बहने हैं, नहीं, हर एक का अपना रोल है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है जहां भी हैं। अगर कोई पहरा दे रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोई सफाई वालों के ऊपर ध्यान दे रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और बाकी तो सारी ड्यूटीज है, कोई धोबी घाट को देख रहा है, कोई प्रेस की बातों को देख रहा है, कोई दिन का पहरा दे रहा है, कोई रात का पहरा दे रहा है, मुरली डिपार्टमेंट कितनी सेवा कर रही है, एक से एक बढ़ करके, और ये चीज दुनिया में कहीं नहीं है। कंटिन्यूस लगातार आत्मा को भोजन मिलता रहे, मुरली रोज मिलती रहे, रेगुलर मिलती रहे, ये कोई कॉमन बात नहीं है, विशेष बातें हैं ऐसी बहुत सारी। आप मंथन करना, लिखना, आपको 108 बातें नजर आएंगी। तो इस बातों को ध्यान में रखते हैं, फोटोग्राफी डिपार्टमेंट, वीडियो डिपार्टमेंट क्या क्या कर रही है। आज वीडियो डिपार्टमेंट वालों ने कहां से कहां बाबा को पहुंचा दिया, सारी दुनिया के अंदर टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा। ऐसा कोई है स्कूल, ऐसा कोई कॉलेज है जहां पर एक ही साथ 130 देशों में लोग बैठ करके बाबा की मुरली सुनते हैं? सोचो तो सही। तो ऐसे बहुत सारी खुशी की बातें हैं। मैं तो कहता हूं ब्राह्मणों के अंदर ये सदा अपनी सेल्फ एस्टीम रहे, अपना स्वमान में रहें, अपनी स्व स्टडी पे ध्यान रहे, अपनी जो सेवा है उसको हम एक्यूरेटली करते रहें, तो बाबा की तो पद्मा पद्म गुना आशीर्वाद हम बच्चों के ऊपर सदा ही है, मांगने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, ऐसा जब दिल में खुशी रहेगी ना तो लगेगा बाबा हमारे साथ है सदा। तो सदा उड़ती कला में रहना, सदा मौज में रहना, ईश्वरी मस्ती में रहना। ओम शांति।